الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की हम तफसीर पढ़ते हैं इस वाली क्लास के अंदर, दीन एसेंशियल्स फॉर मेन के प्रोग्राम के तहत। एक मिनट, अपने कानों के लिए काफी लाउड है, बंद कर दिए ऐसे। अच्छा, तो इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं मारफुल कुरान की जिल्द नंबर 5 से, और आयात नंबर चल रही हैं 7 से लेकर के 20 तक। ठीक है, तो इनका तर्जुमा हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था और खुलासा तफसीर हमने शुरू कर दी थी। इसमें एक नुक्ता जो पिछली क्लास के अंदर डिस्कस हुआ था कि ये जो फरमाया ना अल्लाह ताला ने कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरफ इस जुमले को मंसूब करते हुए कि उन्होंने कहा कि इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन। ठीक है, कि हमारा बाप जो है ना वो सरी खता पर है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको काफी तफसील मेरे ख्याल में पिछली क्लास में हो गई थी कि भाई अगर हम किसी को अपना बड़ा मानते हैं, ठीक है, और बड़ा भी कैसा कि मुत्तकी नेक परहेजगार, ठीक है, तो जब उसको मानते हैं तो उसकी भी तो मानना चाहिए ना। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट गलती, बड़ी मेजर सिग्निफिकेंट गलती जो है वो मानने वाले कर जाते हैं कि किसी को बड़ा मान तो लेते हैं लेकिन उसकी नहीं मानते। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर देखा जाए तो तीन मेन कैटेगरीज बनती हैं इंसानों की, तीन मेन कैटेगरीज। ठीक है, जो कि कुरान मजीद में भी सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा शुरू फरमाई तो वही तीन कैटेगरीज इंसानियत की अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल्लिल मुत्तकीन, यहां से शुरू किया। ठीक है, तो ये जो मुत्तकीन होते हैं उनकी क्या क्या डेफिनेशन होती है कि ये बड़ों को भी मान लेते हैं और बड़ों की भी मान लेते हैं। ठीक है, कि वो जो कह रहे हैं वही हक है, वही सच है, और फिर उसके ऊपर अमल करने की इखलास के साथ कोशिश में लग जाते हैं। ठीक है ना, ये लोग कौन होते हैं? ये मुत्तकीन होते हैं, और जितना ज्यादा वो यानी अमल करते जाते हैं और नाफरमानी से बचते जाते हैं उतना ज्यादा उनका तकवा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो तकवा की तो बहुत बड़ी यानी रेंज है ना, बिल्कुल बेसिक तकवा भी होता है ईमान लेकर के आ जाना, और जो है वो तकवा की आला तरीन लेवल भी होता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसा तकवा। ठीक है, लेकिन कैटेगरी ये पहली ईमान वाला जो को भी मानते हैं और की भी मानते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी कुरान मजीद ने बयान फरमाई, ठीक है, इन लजीना कफरू सवा उन अलैहिम अअंजरतहुम अम लम तुंजिरहुम ला युमिनून। राइट, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारहिम गिशाव व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। खलास, दूसरी कैटेगरी मुकम्मल हो गई। पहली कैटेगरी 5 आयतों में मुकम्मल हो गई, दूसरी कैटेगरी उससे भी कम 3 आयतों में मुकम्मल हो गई। ये दूसरी कैटेगरी क्या होती है? जो के बड़ों को ही नहीं मानते, ठीक है ना, उनका इनकार करते हैं। ठीक है, तो उनको नहीं मानते तो उनकी भी नहीं मानते, बिल्कुल यानी सादा सी बात है, आसान सी बात है, 3 आयतों में निपटा दी कि इनके साथ क्या होगा। ठीक है, और क्या हो रहा है इस दुनिया में, इनके साथ क्या हो रहा है कि इनकी आंखों के ऊपर जो है ना वो पर्दा है, इनके कानों के ऊपर जो है वो डांट पड़े हुए हैं, और ये जालिम लोग हैं। फिर उसके बाद शुरू होती है तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी जो है ना ये चलती है लंबी, ठीक है ना, पहले से भी ज्यादा आयात, और दूसरे से तो बहुत ज्यादा आयात इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ये कैटेगरी कौन सी होती है? ये जो के यानी ऊपर से को तो मानते हैं लेकिन अन यानी की नहीं मानते। ठीक है, को तो मान लेते हैं लेकिन की नहीं मानते, को मानने मान लेने से मुराद जो है ना कि यानी ऊपर ऊपर से मानते हैं, अंदर 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 से नहीं मानते, तो ये फिर कौन कहलाए कि मुनाफिक कहलाए। ठीक है, तो यानी बिल्कुल बेसिकली धोखा, डिसेप्शन। ठीक है, अच्छा अब इन कैटेगरीज के दरमियान की फिर छोटी छोटी सी ना ट्रैजेक्टरीज निकलती हैं। ठीक है, कि को मानते हैं लेकिन की नहीं मानते, तो भाई को मानते हैं की नहीं मानते, तो अब कितनी कितनी नहीं मानते, या को मानते हैं और की भी मानते हैं लेकिन शक में रहते हैं। ठीक है, शक में रहते हैं, को मानना जो है ना इनका पूरा नहीं होता, बल्कि एक शक रहता है, एक डाउट रहता है, एक कमजोरी रहती है, को मानने के अंदर कमजोरी रहती है। ठीक है, यानी बड़ों को बड़ा मानते भी हैं लेकिन थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्या वाकई बड़े हैं, क्या वाकई जो है वो इनकी बात माननी चाहिए, क्या ये इस काबिल है कि नहीं है वगैरह। ठीक है, तो ये एक डाउट रहता है, एक शक रहता है, इसको कहते हैं ईमान की कमजोरी। ठीक है, तो इस ईमान की कमजोरी में जो मुब्तला होते हैं तो वो भी खतरे में रहते हैं, वो भी खतरे में रहते हैं, उनको चाहिए कि अपने इस ईमान की कमजोरी को जो है ना वो मजबूती से तब्दील करने के की तरफ मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें कि भाई उनका को मानना जो है ना ये कामिल हो जाए, ये मुकम्मल हो जाए। ठीक है, तो अगर मुकम्मल नहीं होगा तो फिर होता क्या है कि आप जो है वो बड़ा मान रहे होते हैं लेकिन जब कोई आजमाइश आती है, परेशानी आती है, टेस्ट आता है, तो फिर उसके बाद जो है ना ये को मानना भी जो है वो खत्म हो जाता है, और फिर या तो यानी बिल्कुल ही ना मानने वालों में इंसान दाखिल हो जाता है, या ये कि फिर मुनाफिकत के कैटेगरी के अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक है, कि ऊपर ऊपर से मान रहा है लेकिन अंदर से बिल्कुल भी नहीं मान रहा, तो ये मुनाफिकत की कैटेगरी भी अजाब नजीम का हकदार बना देती है इंसान को, और कुफ्र की कैटेगरी भी अजाब अजीम का हकदार बना देती है इंसान को। बहरहाल, तो ये तो पीछे की एक डिस्कशन जो है वो सॉर्ट ऑफ दोबारा से हमने थोड़ी सी कर ली। अब जो है ना वो आगे चलते हैं कि हमने खुलासा तफसीर में पेज नंबर 27 के ऊपर यहाँ तक पढ़ लिया था कि ये रुबाइयों ने आपस में डिस्कशन करी ना कि जी हमें अपने भाई के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे वाले साहब जो है ना बड़ी गलत फहमी मुब्तला है और ये हमारे भाई को हमारे ऊपर तरजीह दे रहे होते हैं, हालांकि तरजीह तो हमें देनी चाहिए थी उनको। ठीक है, तो ये एक गोया के पूरा का पूरा सीन था, ड्रामे का सीन, क्योंकि ये किस्सा है ना पूरा का पूरा, तो ये सीन जो है वो हमने मुकम्मल पढ़ लिया था कि उन्होंने फैसला कर लिया कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ अगला सीन? ठीक है, अगला सीन ये हुआ इस वाकये का कि सारे जो है ना वो अब्बा हुजूर के पास पहुंच गए और उन्होंने जाकर के वहां पे कहा कि कालू या अबाना मालक ला तमन्ना अला यूसुफा व इन्ना लहू लनासिहून। ठीक है, कि ए हमारे अब्बू, सबने यहाँ पे खुलासे तफसीर से पढ़ रहे हैं कि सबने मिलकर बाप से कहा कि अब्बा इसकी क्या वजह है कि यूसुफ के बारे में आप हमारा एतबार नहीं करते। ठीक है ना, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ला तमन्ना, ठीक है, हमारे ऊपर एतबार नहीं करते कि कभी हमें साथ नहीं भेज हमारे साथ नहीं भेजते उसको। ठीक है, यू डोंट एंट्रस्ट हिम विद अस। ठीक है, हालांकि हम उसके दिलो जान से खैर ख्वाह हैं। ठीक है, दनासिहून, नासिह किसको कहते हैं, खैर ख्वाह को कहते हैं जो कि किसी का अच्छा ही चाहता है, तो बाप से कह रहे हैं कि हम उसके खैर ख्वाह हैं, हालांकि अंदर से क्या मामला था, बिल्कुल भी खैर ख्वाह नहीं थे, बल्कि बहुत ही सिनिस्टर किस्म की प्लानिंग करके ये तो अब्बा के पास आए थे, लेकिन ऊपर से झूठ, ये झूठ है ना, इन्ना लहू लनासिहून, साफ झूठ। ठीक है, अल्लाह के नबी से आकर के, अपने वालिद से आकर के, जिनको मानते हैं कि ये अल्लाह के नबी हैं। ठीक है ना, तो पहले तो कहा कि जी वो सरी गुमराही में, यानी उनकी जजमेंट के ऊपर ही जो है ना वो मिसट्रस्ट कर लिया। अब जो है वो आकर के सरी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखें ये भी होता है कि सब कुछ मानने के बावजूद जो है ना वो मुंह पे आकर के झूठ बोल रहा होता है और समझता है कि जैसे उनको पता ही नहीं चलेगा, या उनको जो है वो यानी अगर अगर उनको ना भी पता चला लेकिन ये नहीं समझ रहा होता कि भाई अल्लाह ताला को तो पता चल रहा है ना। ठीक है ना, इनको बेशक इल्मुल गैब हासिल नहीं है लेकिन अल्लाह को तो इल्मुल गैब हासिल है ना। ठीक है, तो मेरे झूठ बोलने का क्या फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये बड़ा यानी सीरियस किस्म का ब्लंडर होता है जो कि हम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे इख्वान यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसका एहसास ही नहीं हो रहा था, राइट, इसका बिल्कुल शऊर ही नहीं हो रहा था कि कर की भी बात है ना, कॉमन सेंस, ठीक है कि यार तुम क्यों झूठ बोल रहे हो यार, ठीक है। तो लेकिन कर रहे हैं, ठीक, उसी तरीके से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, सही है। अब इसमें ना एक एक नुक्ते की बात है, वो जरा हम समझ, ठीक है, वो क्या है कि ये जो अंबिया अलैहिम सलाम होते हैं ना, इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने भेजे होते हैं, ये किस काम के लिए भेजे होते हैं, ये किस काम के लिए भेजे होते हैं, ठीक है। इंसानियत किसी गुमराही का शिकार हो चुकी होती है, किसी नुक्स का, किसी मर्ज का, ठीक है ना, शिकार हो चुकी होती है, ये भेजे गए होते हैं उनका इलाज करने के लिए, है ना भाई, कि उस गुमराही से उनको बाहर निकालें, उनके अकीदे का इलाज कर दें, ठीक है ना, उनके आमाल जो है वो बहुत बुरे हो चुके हैं, उनके आमाल की बुराई का इलाज कर दें। तो ये इलाज मुआलजे के लिए भेजे गए होते हैं। इलाज मुआलजे के लिए भेजा गया जो बंदा होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, तो लबा से सवाल है कि जो इलाज मुआवजा करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उर्दू में बता दें, अरबी में बता दें, अंग्रेजी में बता दें, दक्तूर, ठीक है ना, दक्तूर साहब कहते हैं ना उसको, ठीक है। तो अब जो दक्तूर साहब है ना, तो दक्तूर साहब जो है ना वो किसी कम्युनिटी में गए, सही है, और वहां पर उनका काम है, उनको ये यानी ये टास्क दे करके भेजा गया है कि वो उस कम्युनिटी में लोग जो बीमार हैं उनका इलाज करें, ठीक है ना। भेजने वाला कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है ना, विजारत सेहा, ठीक है। अब जो विजारत सेहा अगर किसी इलाके में अपने दक्तूर्स को भेजती है इलाज करने के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि ये दक्तूर साहब को जो है वो क्या मतलब ऐसी क्या कहते हैं खाली हाथ भेज देती है कि बस तुम जाओ और तुम जो है ना वो लोगों को बस हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम दक्तूर हो, तुम जाओ जाकर के वहां पे इलाज करो, ठीक है ना, ऐसे ऐसे भेज देती है डॉक्टर साहब को, या कुछ करके भेजती है, कुछ 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 किस, किसी के साथ भेजती है, राइट। दे आर सेंट राइटली इक्विप्ड, क्या मतलब, सबसे पहले तो उनको नॉलेज से इक्विप करती है, यानी ये दक्तूर साहब जो है ना ये सर्टिफाइड डॉक्टर होने चाहिए, इन्होंने कुछ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया होना चाहिए, इन्होंने जो है वो एमबीबीएस की होनी चाहिए, फिर उसके बाद इन्होंने रेजिडेंसी या हाउस जॉब वगैरह की हुई भी है, ठीक है ना, हुई भी यानी की भी है इन्होंने, ठीक है ना। तो एजुकेशन से इक्विप्ड, उसके बाद फिर खाली एजुकेशन से इक्विप करके क्या आप भेज देते हैं, बल्कि जैसे आपने लिखा एसेंशियल टूल्स, टूल्स भी तो कुछ इसके पास होने चाहिए ना, सबसे मिनिमम टूल डॉक्टर साहब के पास क्या होता है, स्टेथोस्कोप, ठीक है ना, क्योंकि दक्तूर साहब जो है वो उनके पास इतनी साइट बियॉन्ड साइट नहीं है कि वो जो है ना वो आपकी जो है वो यानी सीने के अंदर के अहवाल जो है वो पता कर सकें, आपकी पल्स जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली पता, हाँ बल्कि आप थोड़ा सा हाथ रख करके पल्स के तो चलने कर सकते हैं, लेकिन सीने के क्या हाल चल रहे हैं, है ना, तो उसके लिए तो स्टेथोस्कोप की जरूरत है ना, स्टेथोस्कोप के बगैर वो नहीं चेक कर सकते ये चीज, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ और भी होता है कि नहीं होता, या सिर्फ एक स्टेथोस्कोप के साथ भेज देते हैं, कुछ और भी तो भेज कुछ देते हैं ना, कुछ क्लिनिक वगैरह के इक्विपमेंट होता है, कुछ जो है वो अल्ट्रासाउंड की मशीन भी, और माशाल्लाह जरा बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होगी सऊदी अरब जैसी, ठीक है ना, तो वो फिर अल्ट्रासाउंड मशीन भी भेजेगी साथ लेकर के भेजेगी, कुछ इसके साथ और भी कुछ कि भाई आप जो है ना वो जिन मरीजों का इलाज कर रहे हैं तो आप कुछ उनकी डायग्नोसिस जो है वो सही तरीके से कर सकें, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख करके और अपने गुमान की बुनियाद पर आप उनका इलाज ना कर रहे हो, बल्कि थोड़ा सा श्योरिटी के साथ, बेशक आपके पास एक्सरे विजन आपकी आंखों के अंदर फिट नहीं है, हम आपकी आंखों में फिट करके एक्सरे विजन नहीं भेज रहे, लेकिन आपको एक्सरे की मशीन दे करके भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो दुनिया की एक हुकूमत जो होती है ना, वो अपने दक्तूर साहब को जब किसी इलाके में लोगों का इलाज करने के लिए भेजती है, तो ऐसे ही जो है ना वो किसी यानी क्या कहते हैं, एरे गैरे नथु गैरा, एरे गैरे नथु गैरा को तो नहीं भेज देती ना, ठीक है ना भाई, कुछ करके भेजती है ना, कुछ दे करके भेजती है ना। तो जिसकी सबसे बड़ी हुकूमत है, जो कि असल अहकमुल हाकिमीन है, राइट, और हर चीज के ऊपर कादिर है। वो जब अपने दक्तूरों को अपने बंदों के पास भेजता है उनका इलाज करने के लिए, तो ऐसे ही किसी ऐरे गैरे नत्थू गैरों को भेज देता है उठा करके, और जो है वो या खाली जो है वो एजुकेशन दे करके फिर उसके बाद बगैर किसी टूल्स के उसको भेज देता है। क्या क्या कुछ कॉमन सेंस की बात है, कुछ बात अकल में आती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता? कुछ दे करके भेजते हैं ना भाई, कुछ होना चाहिए उनके पास ना, वरना वो इलाज कैसे करेंगे? अगर बिल्कुल ही जो है वो यानी अंधे, राइट, बिल्कुल ही अंधे, तो फिर वो तो यानी उल्लू ही बनते रहेंगे खाली हर वक्त, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना उल्लू बनना, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होता ना, ठीक है ना? हाँ, ये और बात है कि अगर जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है ना उसकी नीयत ही खराब हो कि वो उस इलाके के लोगों का इलाज नहीं चाहती हो, इलाज नहीं चाहती हो, तो फिर तो वो किसी ऐसे डॉक्टर को भेजेगी जो कि उनकी मर्ज की डायग्नोसिस ही ना कर सके, उनको सही मेडिसिन ही ना दे सके और उनका इलाज का सबब ना बन सके। लेकिन अगर मिनिस्ट्री की नीयत अच्छी है तो फिर तो वो ऐसा नहीं करेगी ना, ठीक है? तो इस वजह से जो है ना जो अंबिया अलैहिस्सलाम होते हैं उनको भी नेसेसरी ट्रेनिंग और नेसेसरी टूल्स के साथ इस दुनिया में भेजा जाता है। और जब अंबिया का सिलसिला दुनिया के अंदर बंद हो गया ना, तो उसके बाद इंसानों ने बीमार होना बंद तो नहीं कर दिया? शैतान जो है वो उसके बाद लीव लेकर के जो है वो जहन्नुम की रास्ता तो नहीं इसने पकड़ लिया? वो तो अभी भी दुनिया के अंदर ही है और अल्लाह के बंदों के ऊपर जो है वो अपना काम करे चले जा रहे हैं। तो नबियों का सिलसिला बंद हो जाने के बाद जो उलमा और मशायख का सिलसिला है, तो वो बिल्कुल ही इल इक्विप्ड, इल इक्विप्ड, कुछ नहीं उनको, ना आगे का पता ना पीछे का पता, ना उनके पास नेसेसरी इल्म है, ना उनके पास जो है वो कोई नेसेसरी टूल्स हैं, और ऐसे ही बस जो है वो दोनों का इलाज कर लेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना? तो अब अंबिया को तो वही का टूल भी दिया जा रहा होता था, लेकिन वही का सिलसिला बंद हो गया, लेकिन कश्फ और इल्हाम का सिलसिला बंद नहीं हुआ। कश्फ और इल्हाम ये रूहानी दुनिया के टूल्स होते हैं कि जिनके जरिए से डायग्नोसिस की जा रही होती है, ठीक है ना? और ये कश्फ और इल्हाम जो है ना ये इतना वसी टॉपिक है, ये सिर्फ वो नहीं है कि जी जिसको कि हमने कश्फ और इल्हाम समझा हुआ है, यानी कोई जादू टोना किस्म की कोई चीज नहीं है ये, ठीक है ना? ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक एबिलिटी होती है, बसीरत भी इसको कहते हैं। बसारत तो कम अज कम होती ही है इनके पास, आम इंसान के पास तो अक्सर बसारत भी नहीं होती, वो सामने की चीज उसको नजर नहीं आ रही होती, इनके पास बसारत होती है, ये सामने की चीज को जो है ना वो इग्नोर नहीं कर रहे होते हैं, ये बड़ी तवज्जो के साथ चीजों को जो है वो देख रहे होते हैं। तो बसारत भी इनके पास होती है, अल्लाह ताला की दी हुई खुसूसी नेमत, और बसीरत भी होती है, बसीरत भी इनके पास होती है, और अल्लाह ताला की तरफ से इनको जो है ना वो इनके ऊपर इंकशाफात भी किए जा रहे होते हैं, ये अल्लाह की तरफ से किए जा रहे होते हैं, ये खुद नहीं इंकशाफात अपने ऊपर कर रहे होते हैं, अल्लाह की तरफ से, ठीक है ना? कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तरीका, ख्वाब, ख्वाब जरूरी नहीं है हर चीज के लिए, हर चीज को जो है ना वो ख्वाब में बताने की जरूरत नहीं होती कि भाई इनको ख्वाब आते हैं और जो है ना वो क्या कहते हैं, बड़े हर ख्वाब इनका सच्चा ख्वाब होता है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है सच्चे ख्वाबों की, एक आध सच्चे ख्वाब भी आ सकते हैं और बाकी जो है वो दुनिया के अंदर मामला, ठीक है ना? तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं समझते, हम क्यों नहीं समझते इसको, हम क्यों जो है वो यानी यही वाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों वाली हरकत करने की कोशिश करते रहते हैं, है ना? बीवी साहब आकर के अपने हालात बताती हैं, घर के हालात बताती हैं, वो जो पिक्चर पेंट कर रही हैं, ठीक है ना? अब उन्हीं के जो है ना वो शौहर साहब वो आकर के हालात बताते हैं, वो जो पिक्चर पेंट कर रहे होते हैं बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट, बिल्कुल एक दूसरे से अलग, वो एक अलग पिक्चर पेंट कर रही है, ये एक अलग पिक्चर, ये अपने साइड ऑफ द स्टोरी भी नहीं बल्कि बिल्कुल ही ऐसी स्टोरी बता रहे हैं कि जिसमें कि ये दुनिया के मासूम तरीन इंसान बन करके नजर आए और बीवी जो है ना वो जालिमा तरीन बन करके नजर आए, और बीवी साहिबा आकर के जो है ना वो भी बीवी साहिबा भी मानने वाली, वो भी सिलसिले के अंदर बैठ, वो भी जो है ना वो हजरत 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 करने वाली है ना, और जो है वो बड़ा बड़ी इज्जत और बड़ा इकराम, राइट? लेकिन जो पिक्चर पेंट करेंगे अपने घर के हालात की, उसमें वो दुनिया की मासूम तरीन हाल खातून होंगी और शौहर साहब जो है ना वो जालिम तरीन मर्द होंगे, ठीक है? तो अब जब शेख साहब के पास इस तरह की दो स्टोरीज आएंगी तो क्या दोनों सच हैं? है? ये कोई इज्तिहादी इख्तलाफ तो नहीं है इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी रहना ये दोनों ही सही हैं, एक ज्यादा सही है एक कम सही है? भाई एकदम 180 डिग्री जब डिफरेंस है तो क्या मतलब है दोनों तो सच्चे नहीं हो सकते, या तो दोनों झूठे हैं या एक सच्चा है दूसरा झूठा है, एक सच्चा है दूसरा झूठा है, या एक सच्ची है दूसरा है, राइट? तो क्यों करते हैं हम ये सब कुछ? एक तो ये कि भाई अल्लाह ताला को तो यानी झूठ बोलना क्या है, अल्लाह ताला के हुक्म, अल्लाह ताला के हक के खिलाफ वर्जी, ठीक है ना? चलो भाई अल्लाह ताला हमें नजर नहीं आता, और अल्लाह ताला जो है ना उसको तो हम भूल जाते हैं, शैतान हमें भुला देता है क्योंकि अल्लाह ताला हमें नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है ना? तो एक कमजोर इंसान है तो भूल गया भाई अल्लाह ताला को, नजर नहीं आ रहा अल्लाह ताला को, ठीक है ना, देख नहीं सकता। वो शेख साहब तो नजर आ रहे हैं यार, शेख साहब तो सामने बैठे हुए यार, उनकी तो आवाज भी आ रही है यार, उनकी तो पूरी की पूरी जो है ना वो तस्वीर भी आ रही है भाई, उनके सामने आकर के तुम यानी जो झूठ बोल रहे हो, तो अब तो वो वाला एक्सक्यूज भी तुम्हारा खत्म हो गया कि अल्लाह तो नजर नहीं आता इस वजह से मैं झूठ बोल जाता हूँ, है ना? जो नजर आ रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो और भी बहुत सारी चीजें तुम देख रहे हो, ठीक है ना, उनके साथ आकर के ऐसा व्हाइट लाए, ऐसा सफेद झूठ, ठीक है? लेकिन जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की भाइयों को ये कॉमन सेंस वाली बात समझ में नहीं आती, उसी तरीके से जो भी अपने आप को शैतान के हवाले करता है या शैतान से जो है ना वो बचने का कोई इंतजाम नहीं कर रहा होता, तो शैतान उसके साथ भी एग्जैक्टली यही मामला करता है जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के साथ हुआ था, है ना? कि बाप के सामने जो कि याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं और कितने बड़े नबी हैं, उनके सामने आकर के सरीह झूठ बोल रहे हैं, है? इन्ना लहू लनासहून, कि हम तो उसके लिए यानी बिल्कुल खैर ख्वाह हैं उसके लिए। ठीक है भाई, कोई सवाल, कोई एतराज, कोई इश्काल? सब समझ में आ गया, माशाल्लाह। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो हम तो जी उसके दिलो जान से खैर पाए, ऐसा ना चाहते बल्कि ऐसा ना चाहिए बल्कि आप उसको कल हमारे साथ जंगल भेजिए कि जरा वो खावें खेलें और हम उनकी पूरी हिफाजत रखेंगे, ठीक है? याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे साथ भेजने से दो चीजें माने, एक हुजन और एक खौफ। हुजन तो ये यानी अंदर का जो गम होता है वो ये कि मुझको ये बात गम में डालती है कि उसको तुम मेरी नजरों के सामने से ले जाओ, और खौफ ये कि मैं ये अंदेशा करता हूं कि उसको कोई भेड़िया खा जाए, ठीक है, और तुम अपने मशागल में उससे बेखबर हो क्योंकि इस जंगल में भेड़िए बहुत थे, ठीक है? अब यूसुफ अलैहिस्सलाम नाउज बिल्ला क्या झूठ बोल रहे थे ये बात है? क्या वो अल्लाह के नबी नहीं थे? क्या वो उनको ये बात पता नहीं थी कि अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ जानते हैं और झूठ बोलना जो है वो अल्लाह ताला के हक के खिलाफ वर्जी है? नहीं, यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम जो है उनको फ्यूचर का हाल तो नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या होने वाले आगे जाकर, ठीक है ना? मुस्तकबिल का हाल अल्लाह ताला ने मस्तूर रखा है, सिवाय उसमें से कुछ हिस्सा जो के अपने किसी बंदे को बता देते हैं थोड़ा बहुत, और अंबिया अलैहिस्सलाम को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बता देते हैं, लेकिन मुस्तकबिल का हाल वैसे नहीं पता होता, ठीक है? तो ये हकीकी मानों में हुजन इनको था और हकीकी मानों में उनको खौफ था, ये गलत बयानी नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है, इनको अपने इस बेटे के साथ वाकई शदीद मोहब्बत थी और उनकी सिफात की वजह से थी, और इस बात का इनको अंदाजा हो चुका था कि जो है ना ये अल्लाह का यानी अल्लाह ताला की तरफ से इसको नबूवत मिलेगी, ठीक है? तो इस नबूवत की वजह से उलमा ने फरमाया कि उनको अपने बेटे के साथ शदीद मोहब्बत थी कि यही मेरे मेरे वारिसों में से बनेगा और मेरे पैगाम को जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है उसको आगे चलाने वाला होगा, ठीक है? तो उनको वाकई हुज्न था और उनको वाकई इस बात का खौफ था जिसका कि उन्होंने अपने बेटों के सामने इजहार कर दिया, ठीक है? तो अब उसके बाद आगे से वो तो तुले हुए थे ना कि भाई हमने तो अपना ये एग्जीक्यूट करना है प्लान, तो उन्होंने कहा कि अगर उसको भेड़िया खा ले और हम एक जमात की जमात मौजूद हो, यानी इस हाल में कि हम पूरी जमात वहां पे मौजूद हो, तो फिर तो हम बिल्कुल ही गए गुजरे हुए, ठीक है? तो गर्ज कहकर सुनकर कह सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम से ही उनको लेकर चले, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ना वो जब कोई एक जमात किसी चीज के ऊपर तुली हुई होती है ना, तो बड़े से बड़ा उनका सरदार हो या बड़े से बड़ा उनका जो है वो खानदानी बुजुर्ग हो, वो उसको यानी मजबूर कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ, ठीक है, मर्जी के खिलाफ। हालांकि याकूब अलैहिस्सलाम की मर्जी नहीं थी, याकूब अलैहिस्सलाम इनके बड़े भाई नहीं थे, याकूब अलैहिस्सलाम इनके बाप थे, और याकूब अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं थे, याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। इससे ज्यादा और सीनियोरिटी क्या हो सकती है किसी इंसान के पास, है ना, अपने काउंटर पार्ट्स के मुकाबले में इससे ज्यादा और क्या सीनियोरिटी होगी। उम्र में भी बड़े हैं, मर्तबे में भी बड़े हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से जो मिला हुआ मनसब है उसके अंदर भी यूनिक है, लेकिन हो गए ना, कोअर्स हो गए ना, कोअर्स हो गए ना, और एक काम अपनी मर्जी के खिलाफ करना पड़ गया। इसी तरीके से आज भी होता है कि कुछ बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और उनके पास किसी बात की सही समझ होती है, और वो जानते हैं कि फलाना काम करने में जो है ना वो फायदा नहीं है, नुकसान है। उनको शऊर होता है, यानी उनको फ्यूचर का इल्म नहीं होता, लेकिन उनको शऊर होता है इस बात का कि ये बात सही नहीं है, बात ठीक नहीं है। लेकिन अगर नीचे वाले जो है ना वो इस तरीके से उनको कोअर्स करना शुरू हो जाए, और उनके जो है ना वो पीछे लग करके जो है ना वो उनसे कोई किसी काम करने करवाने के ऊपर तुल जाए, किसी काम करवाने पे तुल जाए, तो ऐसे बड़े भी बिल आखिर अपने छोटों के सामने हथियार डाल देते कोअर्स होकर के, मजबूर होकर के, राइट। याकूब अलैहि सलाम ने हथियार डाले कि नहीं डाले, अल्लाह के नबी थे। तो अगर आज के दौर का कोई कोई बुजुर्ग हो, अकाबिर हो, राइट, और जिसके बारे में आपको पता है, आपने उसकी प्रीवियस जिंदगी को देखा है, आपने उसकी प्रीवियस फिक्र को पढ़ा है, उसकी किताबों को पढ़ा है, उसके बयानात को सुना है, उसके साथ आपने वक्त गुजारा है कि उसकी फिक्र जो है ना वो क्या है, अब अगर वो अपनी उस फिक्र, अपने उस पूरे माजी के जो उसके बयानात हैं, उसके जो जो किताबें हैं जिसके अंदर उसने अपनी बातें लिखी हैं, अपनी सोच को बयान किया है, अगर वो उसके खिलाफ कोई अमल कर रहा है, हालांकि अकाबरीन में से है, बुजुर्गों में से है, तो ऐसे शख्स जिसके बारे में आपको पता है ये सारी बातें कि वो ऐसा नहीं करते हैं, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं, तो फिर वो ये काम क्यों कर रहे हैं? तो क्या इसका, जी आप में से कोई बताए, क्या आप इसका नतीजा अखज करेंगे? दो नतीजे अखज कर सकते हैं, दोनों बताएं क्या नतीजा अखज करेंगे, या क्या नतीजा अखज किया जा सकता है? नंबर वन और नंबर टू, दैट दे हैव बीन कोर्स्ड इनटू इट, ठीक है, और नंबर टू यानी व्हाट इज दी क्या कहते हैं फ्लिप साइड, या क्या इसका जो है वो ऑपोजिट क्या हो सकता है, ऑपोजिट क्या हो सकता है इसका, कि सारी जिंदगी तो उन्होंने हिदायत के साथ गुजारी और सही अंडरस्टैंडिंग के साथ गुजारी, ठीक है ना, नहीं, ये कोर्स इनटू इट जो है ना ये मसलहत ही की एक दूसरी शक्ल है। हाँ, दूसरी शक्ल क्या है, आप समझेंगे वो गुमराह हो गए, है ना, पहले तो उनके अफकार कुछ और थे, पहले तो उनके जो है ना वो नजरियात कुछ और थे, पहले तो वो सारी दुनिया जो है ना, सारी जिंदगी की दुनिया को जो है वो किसी तरह बुलाते रहे, और एकदम से बूढ़े होने के बाद जो है ना वो गुमराह हो गए, गुमराह, अब दे हैव लॉस्ट देयर वे, वो अपना रास्ता गुम कर चुके हैं, भूल चुके हैं। नहीं, हम अपने अकाबरीन के बारे में इस गलतफहमी का, या इस क्या कहते हैं बदगुमानी का शिकार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तेकामत अता फरमाए, ठीक है ना। तो अगर वो इसके खिलाफ कर भी रहे हैं ना, तो वो किसी मसलहत की वजह से, और मसलहत क्या है, बिकॉज दे आर बीइंग कोअर्स्ड इनटू इट, है ना, तो इस वजह से वो ये काम कर रहे हैं, अदरवाइज दे डोंट एक्चुअली एग्री विद इट, दे डोंट एक्चुअली एग्री विद इट, राइट। तो ये मत समझें कि अगर वो अब जो है ना दीन की उन्होंने कोई नई तशरी के मुताबिक सपोजली कोई कोई काम कर लिया है तो वो गुमराह हो गए, ये भी मत समझें, बल्कि उनसे अच्छा गुमान रखें कि मसलियत है, कोर्शन है, ठीक है ना, कोई मजबूरी है, और ना ये गुमान रखें कि दीन बदल गया है, दीन अब चेंज हो गया है। पहले जो है ना जब ये नौजवान थे, या पहले जब ये पूरी दुनिया में एक तबलीग क्या कर रहे होते थे शरीयत और सुन्नत के मुताबिक, तो वो शरीयत और सुन्नत उस जमाने में थी, अब जो है ना वो शरीयत और सुन्नत तब्दील हो गई है, अब दीन बदल गया है, अब जो है ना वो इन अकाबिर साहब ने जो है ना वो कोई नए दीन की तशरीह के मुताबिक अमल करना शुरू कर दिया, तो दीन बदल गया, नहीं, ना दीन बदला और दीन ना बदलना तो उससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि बड़े अकाबिर के बारे में तो हम गुमान रख रहे हैं ना, अच्छा कि ये गुमराह नहीं हुए हैं, अच्छा गुमान रख रहे हैं। दीन के बारे में तो गुमान नहीं, दीन के बारे में तो यकीन रखना जरूरी है, यकीन रखना जरूरी है कि दीन नहीं बदल रहा। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये दीन मुकम्मल हो चुका है नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर, राइट? ये दीन बदलने वाला नहीं है, ये 14वीं सदी में आकर के या 21वीं ईस्वी में आकर के ये बदलने वाला नहीं है ये दीन, कि कोई साहब जो है वो आकर के एक नई तशरीह देना शुरू कर दें इस दीन की। ये दीन मुकम्मल है, ठीक है ना? और जैसे हमारे अकाबरीन ने समझा और उनके अकाबरीन ने समझा और उनके अकाबरीन ने समझा और उनके अकाबरीन ने समझा, ये वैसा ही है, ठीक है ना? ये वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। क्या समझ में आई बात? सम अप कर सकता है कोई इसको? मुश्किल हो जाएगी, रहने दें, अभी टाइम बहुत कम है। तो आगे चलें भाई, कितने लाइन हमने पढ़ ली? तो याकूब अलैहिस्सलाम गेव इन, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ हिज सन्स, ठीक है कि भाई यानी लसूड़े की तरह चिपक गए हैं हमारे साथ, लसूड़े की तरह हमारे पीछे पड़ गए, हमारे अदती लसूड़े का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हैव फुल ट्रस्ट इन अकाब, ठीक है ना, बेहतरीन गुमान लेकिन बेहतरीन यकीन नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के ऊपर, है ना? कुरान और हदीस सब कुछ बदल सकता है, मुमकिन है 0.00001 पॉसिबिलिटी के भी इस दौर के कोई अकाबिर भी बदल सकते हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटी है लेकिन मुमकिन है। क्या मुमकिन नहीं है? दीन नहीं बदल सकता, यानी शरीयत नहीं बदल सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, शरीयत नहीं बदल सकता, ठीक है ना? खत्म नबूवत सिर्फ कादियानियों की शक्ल में नहीं होती कि कादियानी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है खत्म नबूवत का सारा हक आपने अदा कर दिया। भाई ये जो दीन की नई तफहीम व तशरीह और दीन की जो है वो नई शक्लें जो आप निकाल रहे हैं, तो क्या मतलब कोई कोई नए नबी आ गए हैं आप नए नबी बन गए हैं, या आपके दौर के अंदर जो है ना वो लोगों ने मिलकर के एक नई नबूवत का सिलसिला शुरू कर लिया है कि जो कि कुरान मजीद और हदीस मुबारक जो कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई हुई है ना, अब वो जो है वो आप आकर के यहाँ पे तब्दील कर रहे हैं, ठीक है? तो ये खत्म नबूवत की नफी नहीं है, आप जो है वो नबूवत दोबारा से ट्राइंग टू ब्रिंग न्यू नबूवत इन द वर्ल्ड, ठीक है? ये 100% इवन 0.0001 परसेंट पॉसिबिलिटी इसकी नहीं, सही है? अच्छा आगे फरमाते हैं कि जी तो जब उनको अपने साथ जंगल ले गए, हाँ जब उनको अपने साथ जंगल ले गए और करारदाद साबिक के मुताबिक सबने पुख्ता इरादा कर लिया कि उनको किसी अंधेरे कुएं में डाल दें, फिर अपनी तजवीज पर अमल भी कर लिया, और उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए हमने उनके पास वही भेजी कि तुम मगमूम ना हो, हम तुमको यहां से खुलासी देकर बड़े रुतबे पर पहुंचा देंगे, और एक दिन वो होगा कि जब तुम उन लोगों को ये बात जतलाओगे और वो तुमको इस वजह से के गैर मुतवक्का तौर पर शहाना सूरत में देखेंगे, पहचानेंगे भी नहीं। चुनाचे वाकया इसी तरह पेश आया कि भाई मिस्र पहुंचे और आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जतलाया, हल आलिम तुम मा फअल तुम बी यूसुफ, ठीक है कि भाई मिस्र पहुंचे और आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जतलाया, हल आलिम तुम मा फअल तुम बी यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो ये किस्सा हुआ, ठीक है? यानी ये वो ये सीन हुआ ये। अच्छा वही आगे हम पढ़ेंगे भी कि ये जो वही थी ना ये इल्हाम के दर्जे में थी, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अब तो अभी नबी नहीं बनाया गया, 40 साल के अभी हो ही नहीं था, अभी तो बहुत छोटी उम्र के थे। और उधर वो लोग अपने बाप के पास इशा के वक्त रोते हुए पहुंचे, अब एक नया एक एक, एक और सीन आ रहा है इस वाक्य का। और जब बाप ने रोने का सबक पूछा तो कहने लगे कि अब्बा हम तो आपस में दौड़ लगाने में कि कौन आगे निकले लग गए, और यूसुफ को हमने ऐसी जगह जहां भेड़िया आने का गुमान ना था अपने सामान के पास छोड़ दिया, ठीक है? स्टोरी बना रहे थे ना ये, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, सही है? यानी ना तो ये दौड़ लगा रहे थे, ना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो किसी सामान की जगह पे छोड़ा था, ना वो सामान किसी ऐसी जगह पे रखा था जहां पे भेड़िया आने का गुमान ना हो, बिल्कुल ही सारा का सारा वॉज कॉन्कॉक्टेड, सारा का सारा जो है ना वो इन्होंने अपने यानी अपने दिमाग के अंदर एक एक ख्याली पुलाव बनाया हुआ था। ठीक है, बस इत्तेफाकन एक भेड़िया आया और उनको खा गया, और आपको हमारा काहे को यकीन, आप तो हमारा काहे को यकीन करने लगे, है ना, क्यों काहे को। ठीक है, तो हम कैसे ही हम कैसे ही सच्चे हो। और जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास आने लगे थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठ मूठ का खून भी लगा लाए थे कि किसी जानवर का खून उनकी कमीज पर डालकर अपनी कौम की सनद के लिए पेश किया। ठीक है, ये तो खुलासा तफसीर है ना। ये हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि की बयानुल कुरान है। ठीक है ना, अब जब हमारे सामने जो है ना ये असल में मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैहि की मारुफुल कुरान जब हमारे सामने होती है ना, और उसके अंदर उन्होंने हमारी लेवल की उर्दू जुबान के अंदर और इतनी सारी तफसील के अंदर इतनी सारी बातें लिखी होती है ना, तो हमें लगता है कि मारुफुल कुरान जो है ना इससे ज्यादा अच्छी तो कोई तफसीर ही नहीं है। ठीक है ना, और हमें बयानुल कुरान जो है ना वो हम उसको बड़ी तेजी से पढ़ करके और बड़ा यानी इनसिग्निफिकेंट समझ करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, जो कि खुलासे तफसीर है बयानुल कुरान। ठीक है ना, हमारे सामने उसकी अहमियत उजागर नहीं होती, हमारे सामने जो है वो माशाल्लाह मारिफ व मसाइल की अहमियत जो कि मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक है। लेकिन जिस वक्त ये मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह की मारिफुल कुरान दुनिया में मौजूद नहीं थी ना, ठीक है ना, और उर्दू जुबान के अंदर कोई इसके करीब करीब भी तफसीर मौजूद नहीं थी, बल्कि बिल्कुल ही जो है ना वो सिर्फ कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर भी ऐसी जैसे सर सैयद अहमद खान जैसे इंसान की लिखी हुई तफसीर, वो भी मुकम्मल भी नहीं थी। ठीक है, तो उस वक्त हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बयानुल कुरान लिखी थी ना, तो उफ ये बयानुल कुरान उस वक्त जो थी ना समझने के कहते हैं ना जिसको के इसने जो है ना वो तफसीर की दुनिया में आ करके तहलका मचा दिया। उलमाए कराम, बड़े बड़े उलमाए कराम, हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे और बहुत बड़े बड़े अकाबरीन उस वक्त के, वो बयानुल कुरान को देख करके हैरान रह गए। यार क्या जबरदस्त इन्होंने तफसीर लिखी है, क्या जबरदस्त बातों को एक्सप्लेन किया है। और यानी एक आम बंदा या बल्कि एक आम आलिम दीन भी जो है ना वो कुरान मजीद का तर्जुमा अरबी में पढ़े या तर्जुमा देखे, उसके जहन में ये अंदाज बातों को बयान करने का चीज मौजूद नहीं थी ना उस वक्त। मारुफुल कुरान तो मौजूद नहीं थी ना, जो है वो कोई और इस किस्म की तफसीर मौजूद थी, यही थी। अच्छा, हजरत अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा मशहूर कॉल है कि वो समझते थे कि वो कहते थे कि अगर दीन सीखना है ना तो अरबी कुतुब से ही सीखना होगा, उर्दू में तो दीन का कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, वो तो खालिसतन अरबी में ही आपको जाकर के अगर आप पढ़ेंगे तब आपको फिर यानी जो कुछ दीनी कुतुब मौजूद है वो तो अरबी के अंदर मौजूद है, उर्दू में क्या है भाई, उर्दू में तो बस छोटी मोटी बच्चों का रिसाला और फलाना है ना, अवाम उन्नास के लिए चंद चीजें लिखी हुई हैं उर्दू के अंदर। उनका ये कौल है कि जब मैंने बयानुल कुरान देखी ना तब मैंने कहा कि हाँ अब उर्दू में भी दीनी उलूम आ गए हैं, उर्दू में भी दीनी उलूम आ गए। क्या मतलब कि ये इस दर्जे की तफसीर थी कि उन्होंने इसको यानी उर्दू जुबान के अंदर दीनी उलूम का गोया के दरवाजा खुलने से ताबीर दी। ठीक है, तो ये भी जो हजरत ने इस वाकये के बारे में बीच बीच में ब्रैकेट्स के अंदर जो तफसीर है ना ये यानी बहुत अमेजिंग तफसीर है। अगर आप थोड़ा सा मारुफ और मसाइल पढ़े बगैर खाली इसको देखें ना तो फिर आपके ऊपर ये ज्यादा खुलेगी इसकी अहमियत। तो कहते हैं कि ये मतलब जानवरों का खून उनकी कमीज पर डालकर अपनी कौल की सनद के लिए पेश किया। याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो कुर्ता कहीं से फटा हुआ नहीं था, कमा रवाहु तिबरी अन इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन, ठीक है, इब्ने जरीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा होगा। तो फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने हरगिज नहीं खाया, बल्कि यानी ये उन्होंने फरमाया नहीं, ये तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है कि उन्होंने फरमाया कि हरगिज नहीं खाया। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये अल्फाज बयान नहीं किए थे लेकिन समझ इसकी यही है। ठीक है, क्योंकि फटा हुआ कम से कम भेड़िया आता है तो कुछ तो फटा होना चाहिए था ना, और इन्होंने आकर के ऐसी जो है वो, बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली है, सो मैं सबर ही करूंगा जिसमें शिकायत का नाम ना होगा। ठीक है ना। अब तस्वुर करें कि ये जो है ना वो 10 भाई हैं और इसमें मतलब काफी सीनियर लोग हैं। लगता है ऐसा है कि जो बड़ा भाई होगा वो कम से कम लेट 20s में तो होगा या अर्ली 30s में होगा, और छोटा भाई इनमें से जो होगा वो भी लगता है कि यानी टीन सीनियर टीन की उम्र का होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि उस जमाने के जो लोग थे वो कोई केव मैन थे और उनकी अकल जो है ना, जैसे ये काफिर जो है ना वो ह्यूमन हिस्ट्री को अपने तस्वीरों तस्वीरों के जरिए से दिखाते हैं ना कि जी इंसानियत जो है ना वो इतने 1000 साल पहले जो है वो एप की शक्ल की थी और उसका दिमाग जो है वो ऐसा होता था और अकल उसके अंदर नहीं थी, और नहीं ऐसा नहीं था कुछ भी, ठीक है ना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कामिल पैदा किया था और वही पहले इंसान थे, उनसे पहले कोई और इंसान नहीं था इस दुनिया के अंदर। हाँ ठीक है, आप डायनासोर्स की हम नफी नहीं करते, जिन्नों की हम नफी नहीं करते, वो जिन और डायनासोर वगैरह टाइप की चीजें जो है वो दुनिया में मौजूद थी, लेकिन इंसान जो है ना वो कामिल शक्ल में आदम अलैहिस्सलाम के ही आया था, ठीक है। तो ऐसे भी कोई ये नहीं था कि इनकी अकल जो थी वो बिल्कुल ही ऐसी थी कि भाई कि यानी भेड़िया खा रहा है और जो है ना वो इनको इतनी समझ नहीं है कि जो है वो कमीज ही जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक शक्ल में लेकर के आके बस ऊपर से जो है वो सुर्ख रंग की कोई चीज लगा दी। क्यों ऐसा इन्होंने किया, ठीक है, इन्होंने ऐसा क्यों किया? इसकी यही वजह बनती है कि जब कोई इतना बड़ा बड़ा गुनाह करता है ना तो अल्लाह ताला उसकी अकल के ऊपर पट्टी बांध देता है, उसकी अकल पे पट्टी पड़ जाती है और उसको जो है ना वो सामने की चीज नजर नहीं आ रही। अभी थोड़ी देर पहली बात हुई है ना, बसीरत तो तकवा से मिलती है, तकवा नहीं होता तो बसीरत नहीं मिलती इंसान को। लेकिन अगर इंसान गुनाह में जो है वो आगे बढ़ जाए ना, और इतना बड़ा गुनाह कि अल्लाह के नबी के बारे में कह रहे हैं कि नफी वलाल मुबीन, और नबी के सामने आकर के जो है वो सरी झूठ बोल रहा है, तो ये छोटा गुनाह नहीं है, तो बहुत बड़ा गुनाह है ना। और भाई को जो है वो इस तरीके से यानी अजियत देने की जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला फिर जो है ना वो उसको फिर ऐसा कर देते हैं कि उसको सामने की चीज नजर नहीं आ रही। यानी अकल है ना कि आप देखते हैं कि भाई भेड़िया जो है वो बगैर कमीज फाड़े हुए कैसे किसी को जो है वो खा जाएगा, लेकिन ऐसा ही होता है, ऐसी अकल खराब हो जाती है। जैसे कि इंसानियत की अकल कोविड-19 के जमाने में यही मामला, सामने पड़ी हुई चीज नजर नहीं आ रही कि कैसे आपको जो है वो उल्लू बनाया जा रहा है, कैसे जो है ना वो नथिंग इज मैचिंग विद सम विद एनीथिंग एल्स, लेकिन बिल्कुल आमन्ना व सदकना जो मीडिया कह रहा है जो बताया जा रहा है भाई सच है, बिल्कुल अकल पे पट्टी पूरी यानी विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस पूरी दुनिया की अकल के ऊपर पट्टी। क्यों? गुनाह की कसरत की वजह से, और गुनाह की जो है ना वो यानी बड़े बड़े गुनाहों की कसरत की वजह से ऐसी अकल जो है ना वो खत्म हो जाती है, और वही सिलसिला जो है वो यानी वो कोविड-19 तो एक टेस्ट था कि क्या इंसानियत कि 99% इंसानियत की अकल पे पट्टी पड़ चुकी है कि नहीं पड़ चुकी है, वो टेस्ट किया गया, कामयाबी बिल्कुल हाँ पड़ चुकी है। अब जो है ना वो कोई भी इस किस्म की चीज लेकर के आएंगे और उसको जो है वो अपने सोशल मीडिया के जरिए से और अपने प्रिंट मीडिया के जरिए से और अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से इंसान को बताएंगे ना, मानने वाले तैयार हो जाएंगे, और वो इतने ज्यादा होंगे कि थोड़े से जो मुखालिफ होंगे ना उनकी कोई हैसियत ही कोई नहीं, वो बकते रहे अपना एहतजाज करते रहे बोलते रहे लिखते रहे, कोई नहीं सुनने वाला उनकी, ठीक है। तो ये टेस्ट जो है वो कामयाब हो चुका है। अब अगर वो एलियंस भी लेकर आएंगे ना, जो कि शुरू हो चुका है, अगर किसी ने खबर पढ़ी हो कि 2 महीने पहले जो है ना वो अमेरिका के अंदर उन्होंने ये एलियंस के दूसरे सैयारों की पता नहीं कोई मखलूक आई भी है, और ये बिल्कुल हकीकत है, यानी बिल्कुल जो है ना वो संजीदगी के साथ हुकूमती ऐवानों के अंदर हुकूमत के लेवल के ऊपर जो है वो उसके ऊपर बड़ी संजीदा डिस्कशन हो रही है। मुझे जब किसी ने बताया ना ये बात, मैंने कहा यार ये तो चलता रहता है, ये क्या कहते हैं रिप्लाइज बिलीव बिलीव इट और नॉट, एक रिसाला निकलता है अमेरिका के अंदर बच्चों का, है ना, तो उसके अंदर एलियंस की खबरें जो है वो 50-60 साल से लगातार आती रहती हैं, और इस किस्म के जो इवनिंग न्यूज टाइप के जो जरीदे होते हैं तो उनके अंदर भी इस किस्म की चीजें आती रहती हैं, तो आ गया होगा भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहते हैं नहीं, अभी जो डिस्कशन हो रही है ना ये वो नहीं है कि इवनिंग स्पेशल टाइप के उसके अंदर डी क्लासिफाइंग सीक्रेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑन एलियंस, राइट जी एग्जैक्टली, ये CNN, BBC, NBC, जो भी उनके बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स होते हैं उनके ऊपर ये सारी की सारी तमाशे हो रहे हैं, और लोग उसको संजीदगी के साथ सुन रहे हैं और बड़ा सीरियस ले रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो कल को अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया ना कि हाँ भाई आ चुके हैं एलियंस और ये हो गया सब कुछ, कोई इनकार करने वाला नहीं होगा, और जो होगा उसकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि इंसानियत की अकल के ऊपर उनके गुनाहों की शिद्दत की वजह से ऐसी पट्टी पड़ चुकी है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की अकल के ऊपर पट्टी पड़ गई थी कि भेड़िए ने जो है वो खा लिया और कमीजी जो है वो भाई फाड़ करके ले आते, यार इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए, कुछ अपनी तरफ से ही फाड़ देते, कोई इधर से चीसड़ बना देते और फिर उसके बाद खून लगा देते, राइट। लेकिन जरूरत ही नहीं है, जिनकी अकल पे पट्टी पड़ गई तो उनको बेवकूफ बनाना, उनके उनको सिर्फ आप कुछ एनीथिंग, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। उम्मीद है कि हमारी तो नहीं पड़ी होगी तो हमें बातें समझ में आ रही होंगी इंशाल्लाह। चले और आगे पढ़ना है, या टाइम तो खत्म हो गया क्लास का, यहाँ पे रोक देते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को और भी काम होंगे, रात के 9 बज चुके हैं हमारे यहाँ और आपके यहाँ तो और भी देर हो गई होगी, तो पाकिस्तान इंडिया में। चलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।